एक बार फिर जोरदार ताली बजा के रामनाथ जी का स्वागत करते हैं। आप 35 साल से ज्ञान में हैं, ये ज्ञान आपको कर्नाटक से प्राप्त हुआ। पिछले 30 सालों से आप मधुबन में समर्पित रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा में आप व्यस्त रहते हैं और मधुबन में आप टोली बांटने की और उसके पैकेट्स बनाना, हर एक आत्मा को बहुत प्यार से आप टोली वितरण की सेवा जिम्मेवारी से संभालते। कर्म योगी बन सेवाओं में रहते हुए भी विचार सागर मंथन कर ज्ञान के खजानों से भरपूर हैं। आपके क्लासेस के द्वारा लाखों आत्माओं को योग में विशेष मार्गदर्शन आप देते रहते हैं और धार्मिक विंग के आप मधुबन कोऑर्डिनेटर भी हैं। मुरली का जादू क्या है, बाबा ने खोला राज। मुरली का जादू क्या है, बाबा ने खोला राज। शिव जयंती सो गीता जयंती, रामनाथ भाई आज खोलेंगे ये राज। रामनाथ भाई आज खोलेंगे ये राज।
ओम शांति। आज आप और हम सभी इतने बड़े डायमंड हॉल में इसलिए उपस्थित हुए हैं, किसके लिए? शिव जयंती मनाने के लिए। और आज टॉपिक भी यही है कि बाबा ने होमवर्क दिया था कि बच्चे शिव जयंती सो गीता जयंती, ये सबको प्रत्यक्ष करके बताओ, स्पष्ट करके बताओ, समझाओ। तो शिव जयंती कैसे, शिव कैसे आता है और क्यों आता है, आकर के क्या कार्य करता है? तो शिव जयंती के बाद भगवान ने आकर के जन्म लेकर के क्या किया, उसके बाद क्या हुआ? तो ये सारे एक एक प्रश्न ले लो तो ज्ञान स्पष्ट होता है। तो पहले है सिर्फ देखना, सारे विश्व के अंदर कहीं भी शिव जयंती मनाते नहीं, सिर्फ एक भारत देश में ही शिव जयंती मनाते हैं। क्यों? भारत भगवान की भूमि है, इसलिए भारत में ही भगवान आते हैं। लेकिन वो कैसे आते हैं? भगवान उसको कहा जो जनन मरण में नहीं आता है, अभोक्ता है, अजलमा है, निराकार है। वो गुरु ग्रंथ में भी कहते हैं वो कौन निराकार है, ओंकार है, कर्ता पुरुष है। तो निराकार भगवान इस सृष्टि पर कैसे आएगा, कैसे जन्म लेगा? तो कोई माध्यम चाहिए। तो निराकार सर्वशक्तिवान शिव बाबा जो ब्रह्मांड में रहता है वो इस धरती पर आता है और जिस व्यक्ति को सारा चारों युगों का, सारा ब्रह्मांड का ज्ञान देता है उसका नाम है ब्रह्मा। और वो दादा लेखराज थे, उनके तन में साधारण वृद्ध अवस्था में, आज भी बाबा ने याद किया, दाढ़ी वाला मूछ वाला बुजुर्ग तन में, अनुभवी तन में प्रवेश करता है और उनको पहले ज्ञान दे करके उनसे श्रेष्ठ कर्म कराता है, उनको पुण्य आत्मा बनाता है और उनके द्वारा जिनको भी ज्ञान मिलता है उनको कहते ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तो वर्षा कौन देगा? निराकार परम पिता परमात्मा, ये माध्यम है, इसलिए हम कहते हैं अलौकिक बाप। इसलिए हमारी भाषा में बाप और दादा दोनों चाहिए। इसलिए देखना भारत एक ऐसा देश है जहां भगवान को मात पिता कहते हैं। सारे विश्व में गॉड फादर है, भगवान बाप है, सिर्फ भारत में ही भगवान को मात पिता कहते हैं। क्यों? आप देख लो कोई भी श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण है गीता के अनुसार, श्री राम आए, देवी देवता आए, गुरु आए, जो भी धर्म गुरु आए, जो भी आए धर्म की स्थापना किया, उसके बाद कहां गए? उनके जो फॉलोअर्स है तो उनकी पालना कौन करेगा? तो एक ही देखना, यहां ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निराकार भगवान ब्रह्मा के तन में आकर एक दफा ज्ञान सुना के नहीं जाते हैं, एक दफा आए हर साल आके अपने बच्चों की पालना करते हैं। कहीं भी कोई भी हो, कितना गुरु हो, कोई भी हो, गए देवताए गए, गुरु गए, कोई भी गया वह कभी भी वापस नहीं आया। गीता जो एक बार सुनाई थी वही रिपीट हो रही है। लेकिन बाबा भी 50-70 साल पहले आए, एक दफा जो ज्ञान सुनाया हर साल नए नए तरीके से ज्ञान सुनाता है, तो बच्चों की पालना करता है। तब कहते हैं कि भगवान भारत में मात पिता के रूप में माना जाता है। क्यों? अपने आप मात पिता नहीं होते हैं, जो पालना करते हैं। तो भगवान आकर के ब्रह्मा का माध्यम लेकर के इस सृष्टि पर ज्ञान दे करके पहले ब्रह्मा को पवित्र बनाता है, स्वच्छ बनाता है, पुण्य आत्मा बनाता है, श्रेष्ठ कर्म करने की विधि विधान बताता है, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान देता है, आदि मध्य अंत सभी का ज्ञान देता है, उनको बाप समान ज्ञानी तो आत्मा बनाता है। उनके द्वारा जिनको भी ज्ञान मिला तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। लेकिन वो भी क्या कहता है, किसको याद करो, एक निराकार को ध्यान लगाना है, योग लगाना है, वो पतित आत्मा को पावन करता है। और शिव जयंती देख लो, भारत में जब चारों तरफ अंधेरा है इसलिए शिव रात्रि लोग कहते हैं। रात्रि क्यों? रात्रि में दिखाई नहीं दे रहा है आत्मा किसी के प्रकृति में, देख लो आप, आत्मा दिखाई नहीं देती है, शरीर ही दिखाई देता है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर को एक सेकंड भी नहीं रखेंगे, शरीर का कोई वैल्यू नहीं, आत्मा की है। लेकिन आत्मा को देखने के लिए रोशनी चाहिए, तो वो रोशनी देने के लिए तब कहते अंधेरे में रोशनी चाहिए, उजाले में उजाला की जरूरत नहीं है। जब अज्ञान रूपी चारों तरफ अंधेरा होता है तो ज्ञान की रोशनी देने के लिए स्वयं सृष्टि का रचयिता निराकार शिव परमात्मा इस धरती पर आते हैं। किसी ने जन्म लिया तभी उनका जन्म तिथि बनाते हैं, अगर जन्म ही नहीं लिया तो कैसे जन्म तिथि मनाएंगे? तो बर्थडे मनाते हैं, मीन जरूर जन्म लिया। कैसे आते हो और कहां आते हो? तो इस धरती पर ब्रह्मा के तन में, और वो सिर्फ भारत में, और आकर एक दफा आके चले नहीं जाते हैं। तो पतित आत्मा को पावन बनाने का ज्ञान देते हैं कि कैसे पतित आत्मा बने, उनको पावन कैसे किया जाए, तो उसका ज्ञान देते हैं। और ज्ञान देकर पुण्य आत्मा बनाते, पवित्र बनाते हैं और वापस घर ले जाते हैं। लेकिन परमधाम में घर ले जाकर के वहां रखते नहीं है, वहां से फिर भेजते हैं जीवन मुक्ति सत्युग में। तब कहा भारत स्वर्ग था। कब था वो स्वर्ग में कौन रहते थे? तो भारत को देवभूमि कहा, देवताए थे यहां। कब थे वो, कहां गए? आज बाबा ने कहा लोगों की ये मान्यता है देवताए माना वो अमर है, कभी मरते नहीं है। ठीक है, नहीं मरते हैं, लेकिन वो कहां है? कभी तो आना चाहिए। अब देख लो यहां शिव बाबा बाप दादा हर साल आते हैं, हर साल आके ज्ञान सुनाते हैं। आप देखना कभी भी आपके मन में विचार आएगा, आपको भी कोई पूछेगा कि बहन जी भाई जी आप भी मंदिर में जाते हो, आपके मंदिर में भी चित्र रखा है, हम भी मंदिर में जाते हैं, हमारे मंदिर में भी चित्र रखा है, लक्ष्मी का चित्र है, श्री कृष्ण का चित्र है, लक्ष्मी नारायण का चित्र है, दोनों चित्र ही है, चैतन्य तो कोई नहीं, चाहे यहां जाओ चाहे वहां जाओ एक ही है, तो चलेगा ना? चलेगा? आपके मंदिर में भी चैतन्य तो नहीं? हां एक दफा था, अभी तो नहीं। पहले भी श्री कृष्ण था, अभी तो नहीं है, श्री कृष्ण की मूर्ति है। तो आपके आश्रम में भी चित्र है, हमारे आश्रम में भी चित्र है, अंतर क्या है? ये अंतर लोगों को पता होना चाहिए। तब बाबा कहता है बच्चे बाबा के कमरे में जाओ, बाबा से बात करो, अपनी कमी कमजोरी बताओ। तो इसी आधार से लोग मंदिर में जाते हैं, लेकिन मंदिर में जाके पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करते समय आपके सामने कौन है? चित्र है, चैतन्य आत्मा है। कहां है? उसका टेलीफोन नंबर है, एड्रेस है, कभी गया हुआ कभी आया। तो आप जो पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, अपनी कमी बताते हो, कौन सुनेगा? हाँ, आप कहेंगे यहां कौन? अगर आप बाबा के सामने बैठो, चित्र रखा है, लेकिन हम यहां देखते हैं, बुद्धि के अंदर पता है ब्रह्मा बाबा ने जन्म नहीं लिया है, परम धाम नहीं गया, शिव बाबा ने आके उनको कर्म सिखाया, ज्ञान सिखाया, तपस्या कराई और पुण्य आत्मा बनाया, कर्मातीत आत्मा बनाया। कर्मातीत आत्मा बनने के बाद वो आत्मा इस कलयुग में जन्म नहीं ले सकता है, पाप आत्मा है, वापस अकेला घर जा नहीं सकता है, भगवान के सभी बच्चे हैं। तो कहां है? यहां ही बीच में सूक्ष्म वतन कहा। तो ब्रह्मा देवता है, कहा भगवान नहीं है, ब्रह्मा को भगवान नहीं कहते हैं, देवता है, फरिश्ता है, पुण्य आत्मा है। तो हर साल शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों आते हैं। जब भी आप बाबा के कमरे में बैठते हो तो आपकी नजर बाबा के चित्र पर है, दिल बुद्धि बाबा से लगा हुआ है, बाबा ऊपर है, एड्रेस है, हर साल आते हैं। और ये समझकर अगर बाबा से आप बात करते हो तो आपका आवाज संकल्प बाबा तक पहुंचता है। कोई आपको पूछेगा आपके मंदिर में भी चित्र रखा है, तो उनको आपको समझाना चाहिए हम चित्र की पूजा नहीं करते हैं, चित्र से ध्यान नहीं लगाते हैं, लेकिन चित्र रखा है आदर्श के लिए। लेकिन इस तन में जो आत्मा थी वो कहां गई? जन्म लिया, परमधाम गए? नहीं, हर साल आते हैं और यहां ही है हर साल। अभी भी कभी भी संदेश कुछ भी पूछना हो, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर कार्य कारोबार बाप दादा से पूछ के करते हैं। हमारा गुरु टीचर सद्गुरु माता पिता ऊपर है। कोई पूछेंगे यहां गुरु कौन है? ऊपर है, शिक्षक भी है, वो पढ़ाता भी है। कोई भी संदेश कुछ भी चाहे बाबा से कभी भी पूछ सकते हैं। और हर साल बाबा आकर के 6 महीने बच्चों की पालना करता है। जैसे देखो बाबा ने 1 साल पहले कहा था, बच्चे कोई भी हर साल एक ही दवाई नहीं, हर साल नई नई दवाई देता है। 1 साल पहले कहा था बच्चे कोई भी समस्या परिस्थिति आवे आप अमृत वेले उठो, मधुबन में पहुंच जाओ, लेकिन तन से नहीं मन से पहुंच जाओ, बाबा आपके मन को शक्तिशाली बनाएगा। फिर इस साल बाबा जब शुरू में अक्टूबर में आए विदेशों के टर्म में, तभी भी बाबा ने कहा बच्चे कोई भी बात हो बाप को बताओ तो आप हर्षित हो जाएंगे, खुश रहेंगे कि बाप सुनता है, सुन करके इग्नोर नहीं करता है। जरूर कहते हैं भगवान के घर में अंधेर नहीं होता है, देरी होती थोड़ी, आगे पीछे सोच समझ के कार्य। तब कहा अगर कोई भी बात हो बाबा को बताओ। और अभी अभी बाबा ने कहा फिर से दोबारा कि बच्चे दिल में जो 31 जनवरी को कहा, 31 जनवरी को बच्चे दिल में कोई भी बात है रखना नहीं अंदर, अचानक परिवर्तन हो जाएगा। अगर वो दिल की बात अंदर ही रहेंगी 5000 साल तक अंदर ही रहेंगी, बीच में किसको सुनाएंगे? तब बाबा ने एक व्यवस्था दिया, बच्चे दादियों को बताओ, नहीं बड़े दादियों दादाओं को बताओ, नहीं मिलता है आपको जिस पर विश्वास है उनको बताओ, दिल खाली करो, अंदर रखना नहीं कि कभी भी परिवर्तन हो सकता है अचानक। देखो बाबा बच्चों को एक दफा जो पढ़ाया था वही ज्ञान नहीं चल रहा है, तो हर साल आकर के नई नई तरीके से सबसे सहज करके समय परिस्थिति के अनुसार जो बच्चे सहज बाबा से मिल सके, तब नाम है सहज राजयोग। सबसे सहज करके बता बच्चों को पढ़ाते रहता है। तो इसके लिए कहा शिव बाबा आके क्या करता है, पतित आत्मा को पावन बनाने की दवाई देता है। जब बहुत सभी बीमार होते हैं तभी डॉक्टर को याद करते हैं, तभी डॉक्टर आता है। जब कोई भी बीमारी नहीं कोई डॉक्टर आएगा, तो आत्मा जब बीमार हो गई तब भगवान की जरूरत है, और वो पतित आत्मा को पावन करता है। इसलिए नाम है पाप कटेश्वर है वो। किसी को पैसा नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, और ऊपर से सोना पैसे बाबा नहीं लेके आएगा, पाप मिटाने के लिए आता है। अगर आत्माओं के उनका पाप मिट गया, पुण्य आत्मा सदा सुखी है, सदा शांति है, सदा संपन्नता है, उसका नाम है सत्युग। तो भगवान आकर के जन्म लेके शिव जयंती बनाकर जन्म लेके क्या करता है, सत्युग की स्थापना करता है। और सत्युग की स्थापना के वहां कौन होंगे, कौन जाएंगे? अभी आप और हम सभी बाबा के बच्चे बैठे हैं, क्या सभी सत्युग में जाएंगे, पूछ लो। तो थोड़ा सा भी अंश भी, निर्वर भाई पूछा था, थोड़ा भी क्रोध रह गया तो सत्युग में जा सकते हो? हाँ, टिकट मिलेगा, मिलेगा। अंश भी क्रोध का रह गया, क्योंकि वो देव भूमि है, पवित्र आत्माएं हैं, पांच विकार नहीं है। तब शिव पर अक का फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, गुलाब का फूल कभी नहीं चढ़ाते हैं। तो इसलिए कहा कि अपनी जो बुराई है, तो ज्ञान योग धारणा सेवा से अपनी बुराई को शिव बाबा की तपस्या करके भगवान को याद करके उसको मिटाओ। और जितना जो मिटाता है, 100% जिसने मिटाया वो है कृष्ण की आत्मा। नंबर वन कौन बनेगा? स्कूल में भी परीक्षा तो सभी के लिए एक जैसी है, एक जैसा पेपर है। जिसने पांचों विकारों को पूरा जीत लिया है उसका नाम है कर्मातीत आत्मा है। अभी भी आप देख लो, ब्रह्मा बाबा को ही कृष्ण क्यों बनाया? आप कहेंगे हम भी बन सकते हैं, हां बन सकते हो। अभी भी आप पूछ लो, जितने भी हॉल में बैठे हैं, आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी गुस्सा नहीं किया हो ऐसे कोई पुण्य आत्मा है तो हाथ उठाओ। आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी गुस्सा नहीं किया, एक हाथ इधर उठ रहा है। बस एक ही सत्युग में जाएगा, दो एक महीने तक नहीं किया, एक दिन दूसरों ने किया, दूसरों ने आपके ऊपर किया, और इधर एक महीने तक नहीं किया। हाँ देखो, थोड़े से जाएंगे ना सत्युग में। सभा में हॉल में कितने बैठे हैं, सत्युग में जाने वाले कितने? नंबर वन कितने आते हैं? पांच, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, बाकी नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर होंगे ना। तो अपने आप से देख लो, तो शिव जयंती क्यों मनाते हैं, वो क्यों आता है? पतित आत्मा को पावन बनाने की दवा देता है। जो वो दवा लेकर, उस दवा का नाम है राजयोग और पढ़ाई, इन दोनों से अपने को जो 100% मुक्त करता। तभी भी उसमें भी बाबा ने एक चांस दिया था 2 साल पहले ही, बच्चे एक क्रोध को मिटा दो आप, बाकी चार विकार मैं ले लूंगा। हिम्मत का एक कदम रखो, हजार गुना मदद मैं दूंगा। एक क्रोध स्वयं को भी जलाता है औरों को भी जलाता है। इस एक को जीत लो, एक के ऊपर पुरुषार्थ करो, और ये हमारे हाथ में है। सामने वाला गुस्सा करता है, करना न करना हमारे हाथ में है, अपने अपने आता है। क्योंकि स्वयं पर आत्मा समझते हो, शरीर के 5 गुणों को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर आत्मा के अंदर शक्ति है। तो जो शिव बाबा ने आकर के क्या किया, जो 100% प्योर आत्मा बना, उसका नाम है श्री कृष्ण। और वो सत्यु का प्रिंस। उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 10, 25 होंगे ना, तो उसमें भी नंबर 1 आने वाले और 8 आत्माएं हैं। सारे मिलके सत्युग में नंबर 1 जो होंगे वो 8 आत्मा पास विथ ऑनर होंगे। एक स्कूल में भी देखो 100 बच्चे हैं, डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास लेने वाले 5, 2, 3, 4 होते हैं, 2 नंबर लेने वाले 3, 4 होते हैं। तो यहां भी पास विथ ऑनर कितने बनेंगे? 8 रत्न बनेंगे। तो शिव बाबा ने आके, शिव ने इस धरती पर आके क्या किया? पतित आत्मा को पावन किया। और जो पढ़ाई पढ़ करके नंबर 1 जो पवित्र बना, उसके लिए ये ज्ञान सुनाया था। तब कहते हैं शिव जयंती सो गीता जयंती है। गीता से क्या हुआ? श्री कृष्ण पैदा हो गया है। श्री कृष्ण कौन? गीता सुनने के बाद पतित आत्मा पावन बन जाता है। गीता क्यों सुनाई? आप पूछेंगे कि पतित आत्मा को पावन बनाने के लिए गीता सुनाई है। और सुनाने वाले कौन? देखो अगर आप समझते हो, कभी गीता के ऊपर डिस्कशन होता है, सिंपल तरीका है। देखो गीता के अनुसार ही अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे और अर्जुन को 18 अध्याय ज्ञान सुनाया। अर्जुन ने माना नहीं कि मैं परिवार वालों को मारूं और राजा बनूं, मैं भिक्षा मांग के जूंगा, बैठ गया। युद्ध का समय आ गया। अंत में दुनिया के अनुसार, गीता के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक शब्द बताया, हे अर्जुन, आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं, मैं आपको विश्व रूप दिखाता हूं। तो यहां प्रश्न आया कि अर्जुन के सामने कौन था? हम और आप कहते भगवान श्री कृष्ण है ये, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहा है कि आप मुझे देख नहीं सकते हो, तो अर्जुन के सामने कौन था? तो पहले अध्याय में ही श्लोक में सुनाया, श्री मत भगवत गीता है। श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मत देने कौन आया? भगवत गीता है। भगवान किसको कहते हो? जो अजलमा है, अभोक्ता है, निराकार है वो। श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया है, तो निराकार भगवान श्री कृष्ण के तन में प्रवेश कर अर्जुन को ज्ञान सुना रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण को देख रहा था लेकिन निराकार को देख नहीं सकता था। तब का आप मुझे देख नहीं सकते हो, तो अपना रूप दिखाया। जो विश्व में विश्व रूप देखा, जिसके हाथ कांप रहे थे, गॉड इज पावर, भगवान माना शक्ति, उसको देखते ही शक्ति आ गई, अपने गुरु पर बाण चलाने तैयार हो गया। आज भी आप और हम भी इधर आए हैं, आप कहेंगे गुलजार दादी आके बैठेंगे, हम बाबा को बाबा मिलेगा, इसके लिए बता रहा हूं। ऐसे ही बैठे रहेंगे तो युद्ध के मैदान में गीता में भी सभी थे, भीष्म पितामह भी था, किसी को भी पता नहीं है। युद्ध के मैदान में भगवान ने आकर अर्जुन को अपना रूप दिखाया, अपने सर्वशक्ति दिया, किसी को भी पता नहीं है। तो ऐसे न हो आप और हम इधर बैठे हैं, अगर ऐसे देखते रहो आप, भगवान शरीर में कैसे आता है? निराकार। तो शाम को अभी से याद रखो, खाना खाते ही मुंह को पट्टी लगाओ, और कोई भी बोलने का मुख का कोई काम नहीं, खाना तक चाहिए, खाना अंदर जाने के लिए, उसके बाद मुंह का कोई काम नहीं है। अगर शाम को आप यहां आके बैठने के बाद एक घंटा भी बिल्कुल अपने को आत्मा चिंतन करो, अपना अपने आप आत्मा बनती नहीं है, क्योंकि हर सेकंड शरीर का भान रहता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, शरीर का उपयोग करते हम। तो यहां बैठने के बाद आप अपने आप को जागृत करो। इंग्लिश में उसको एक शब्द कहते हैं, दुनिया में मेडिटेशन क्या है? एक्टिवेट योर कॉन्सियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्सियसनेस।
अपने आप को जागृत करो। कैसे करेंगे? बाबा भी रोज कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझ फिर मुझे याद करना। आत्मा के संकल्प परमात्मा को पहुंचते हैं। अगर आप शरीर समझ के बैठते हो शरीर के संकल्प हॉरिजॉन्टल जाते हैं, इधर जाते हैं, भारी है वो। आत्मा लाइट है, आत्मा समझ रहे हो। अगर इस भाई को मैं जानता ही नहीं, मैं पूछता हूं भाई जी आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हो, आप क्या करते हो, तब मुझे समझ में आएगा ना ये कौन है, नहीं तो समझ में आएगा। तो कम से कम अपने आप को भी चार प्रश्न पूछना चाहिए जब भी आप योग में बैठते हो। आज शाम को करके देखना, क्योंकि बाबा ने कहा ये वातावरण बनाना पड़ता है अपने आप। नहीं, जैसे अग्नि हवन करते हैं, हवन के अंदर क्यों करते हैं, सभी का पाप दुख खत्म होना चाहिए। तो हम अपने लिए तपस्या नहीं करते हैं, तो अपने घर में भी कर सकते हैं। सभी एक जगह पर संगठित रूप में सबके मन में एक जैसे अगर विचार चलते हैं कि मैं कौन, अपने को जागृत करो, विचार करो। खाली मन शैतान का काम है। अभी मैं सवेरे देखा एक भाई आया, भाई जी इसके बाद क्लास किसका है, हमने कहा आप क्लास में थे, कहते हाँ बैठे थे, आप मुरली सुन रहे थे, हाँ सुन रहा था, तो क्या सुना आपने बताओ। तब कहा हमारा तन यहां है, मन भी यहां है, आंखें भी यहां है, ध्यान कहां है, किसी को फोन कर रहे हैं, किसी को और कोई ध्यान में है। तब कहा इधर रहते हुए भी स्कूल में जाने से पास नहीं होते, स्कूल में जाने के बाद इसलिए टीचर को कहना पड़ता है गिव अटेंशन, ध्यान दे दो। क्यों कहना पड़ता है कि बुद्धि और मन दो चीजें हैं। हम सुनते भी है पढ़ते भी है, लेकिन समझ जो है वो बुद्धि के अंदर है। तब बाबा कहते हैं बच्चे मन बुद्धि एक करो, ध्यान लगाओ, एकाग्रता से बैठो। कैसे करेंगे वो? तो उसका तरीका जब भी आज शाम को बैठेंगे अपने आप से बात करो, कौन गया कौन आया, इधर उधर देखते रहो, तो हमारा लक्ष्य अलग हो गया ना। आए थे किसके लिए, कर रहे क्या, सिर्फ ज्यादा नहीं, सारी दुनिया में शिवरात्रि पर उपवास रखते हैं, सारा दिन पानी भी नहीं पीते हैं। अब बाबा इतना मेहनत नहीं देता है, एक घंटा शाम को इधर बैठने के बाद बार बार कहना पड़ता है माताएं बैठो आप बैठो। ये अज्ञानियों की सभा नहीं है ना, ज्ञानियों की सभा है, समझदार भगवान के बच्चों की सभा है। और उसमें भी सिलेक्टेड बाबा के बच्चे थे, सभी को नहीं भेजते हैं। तो अपने आप को समझना चाहिए हम रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं, रॉयल दुनिया में जाने वाले हैं। एक दफा का पता समझ में आया, अव्यक्त मिलन है, व्यक्त नहीं। तो अगर शाम को शिव बाबा का अनुभव करना चाहते हो आप आके बैठेंगे शाम को 6 से 7 बजे के बीच में, बैठे बैठे अपने आप से बात करो मैं कौन, मेरा रूप, आत्मचिंतन करो, मेरे 7 गुण है, के गुणों को याद करो, मेरे कर्म, मैं क्या करता हूं, शरीर को चलाता हूं, अभी मुझे यहां शरीर को हिलाना नहीं, शरीर का कोई काम नहीं, कोई आया गया इधर उधर देखना नहीं, क्यों बैठा हूं मैं, शिव बाबा को याद करने बैठा हूं। अब ऊपर से शिव बाबा आएगा, गुलजार दादी के ब्रकुटी में बैठेगा, हमारी नजर एक टिक, जैसे गीता में कहा अर्जुन को कहा मछली के आग को देखकर तीर मारना है, एकाग्रता एग्जाम्पल देते हैं। तो यहां आप और हम बैठे हुए हमारी नजर एक, गुलजार दादी आने से पहले बाबा का इतना बड़ा चित्र लगाया है, इधर देखते रहो कोई आया गया हमारा कोई काम नहीं। तब कहा निराकार स्थिति में बैठकर अगर निराकार शुभ बाबा को याद करते हो तब देखना कि वो पाप कटेश्वर है, बच्चों को शक्ति देने आता है, शरीरधारी बच्चों को नहीं आत्मा को। तो आत्म अभिमानी बैठना जरूरी है। अगर शरीर के भान में है तो वो संकल्प आप कैच नहीं कर सकते हैं। देख लो बाबा जब दृष्टि देता है इस कोने से इस कोने तक देखता है, हर एक आत्मा के ऊपर दृष्टि जाती है। देखना हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, क्यों? बाबा सिर्फ आंखों से नहीं देखता है, उसके साथ संकल्प शक्ति की किरणें छोड़ता है। इसको कहते हैं वाइब्रेशन। दृष्टि देना मीन्स आंखें खोल के देखना नहीं, सिर्फ खाली आंख नहीं है, आंखों के पीछे आत्मा परमात्मा है, वो अपने वाइब्रेशन हरेक को देता है चारों तरफ। तो इसके लिए जब आप बैठते हो तो ये ध्यान दे दो कि आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बैठना, तब आप बाबा का अवतरण। शिव बाबा कैसे आता है कोई पूछेगा आपको, आप कह सकते हैं हमने देखा है, हमने पाया है, सिर्फ सुना नहीं, हमने भगवान आते हुए देखा है और हमने पाया है। तब आप औरों को भी बता सकते हो और आपको भी आत्मविश्वास होता है। नहीं तो हाँ, गए थे मधुबन में, बाबा के सामने गए भी कुछ अनुभव नहीं हुआ, अनुभव अपने आप नहीं होता है। तो शिव जयंती से गीता का भगवान श्री कृष्ण कैसे बना हो? तो ज्ञान सुना के अभी भी यहां भी जो ही सत्ययुग में जाने वाले सब यहां ही बैठे हैं, लेकिन अपने आप से पूछना ज्ञान और योग और सेवा से अपने को कितना प्योर बनाया है। सत्ययुग में आने वाले हैं, त्रेता में आने वाले हो, द्वापर में आने वाले हो, कब आने वाले हो, अपने तकदीर को देखना। अगर वो देखना भी चाहते हो आप अभी भी देख सकते हैं। देखो रात को सोते हो तो देखना किस प्रकार के स्वप्न आते हैं, अंदर क्या भरा हुआ है स्वप्न बताता है, फिर मन बताता है, फिर मन में विचार आते हैं, फिर कर्मों में आता है। कभी कहेंगे हमने गुस्सा नहीं किया, लेकिन मन में गलत विचार तो किया, अंदर अभी भी पाप भरा हुआ है। तो सत्ययुग में जाके क्या करेंगे, तब समझ में आना चाहिए कि गीता जयंती सो शिव जयंती सो गीता जयंती। गीता का श्री कृष्ण और सत्ययुग कैसे स्थापन हुआ, यह संगम पर होता है, और संगम पर भी शिव बाबा आकर के ज्ञान सुनाकर पतित आत्मा को पावन करता है। तो इसलिए बाबा ने कहा सिद्ध करके औरों को बताओ। तो कैसे गीता से शिव जयंती से गीता भगवान आ गया, कृष्ण कैसे बना, कहां से आया वो, सत्ययुग कैसे स्थापन हुआ, तो ये संगम पर होता है। और भगवान तभी आता है, डॉक्टर तभी आता है जब बीमार है। तो इस प्रकार हरेक को ये संदेश देना चाहिए। तो ये पता होना चाहिए, कोई अभी आप जाते समय ट्रेन में भी आपको पूछेंगे तो आपके पास समझ चाहिए भगवान कैसे आता है, किसके लिए आता है, आके क्या करता है और उससे क्या हुआ। तो ये चार प्रश्नों का अगर आप जवाब देते हो तो सबको समझ में आता है। ओम शांति।
बने हम मोती, शिव ज्योति में